दिन भर 25 जुलाई दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। रामनाथ कोविंद बने भारत के 14वें राष्ट्रपति।
मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा।
चीन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को डोकलाम विवाद का मुख्य साजिशकर्ता बताया और जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल का देहावसान।
ये सवाल हर वक्त आते हैं कि आप कॉस्मिक रेस क्यों करते हो, आप एस्ट्रोनॉमी क्यों करते हो, आप स्पेस प्रोग्राम क्यों करते हो।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। रामनाथ कोविंद ने आज भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्हें संसद भवन में आयोजित समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे एस खेर ने शपथ दिलाई। शपथ के बाद पूर्ववर्ती राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नए राष्ट्रपति को बधाई दी। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि वो ये पद पूरी विनम्रता के साथ ग्रहण कर रहे हैं। मुंबई में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई है। रिपोर्टों के मुताबिक मलबे में दबने से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 15 लोगों को बचाव कर्मियों ने बाहर निकाला है। इनमें से कुछ लोगों को चोटें भी लगी हैं। मलबे में अभी कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचावकर्मी उन्हें निकालने की कोशिश में जुटे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक इस इमारत का एक हिस्सा नर्सिंग होम की तरह इस्तेमाल होता था और इसे दोबारा बनाया जा रहा था। इसराइल सरकार ने यरूशलम के पवित्र स्थल से मेटल डिटेक्टर हटा दिया है, लेकिन मुस्लिमों का कहना है कि वो हरम अल शरीफ या टेंपल माउंट के नाम से पहचाने जाने वाले इस स्थान का बहिष्कार जारी रखेंगे। वक्फ फाउंडेशन ने कहा है कि उसकी तकनीकी कमेटी का आकलन पूरा होने तक मुसलमानों को परिसर स्थित अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसराइल के एक मंत्री याओ गलांत ने कहा कि वो मेटल डिटेक्टर लगाने को एक गलती मानते हैं। हांगकांग की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने एक विवादित योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वेस्ट काउलून स्टेशन की ट्रेन प्लेटफॉर्म और अप्रवासन की सुविधाएं चीन के न्यायाधिकरण में होंगी। चीन के अधिकारी इस स्टेशन पर काम करेंगे। अगले साल के आखिर से इस स्टेशन से ग्वांगझोउ के लिए हाई स्पीड ट्रेनों का केंद्र बनने की उम्मीद है। इस फैसले का विरोध करने वालों का कहना है कि इससे हांगकांग के कानून का उल्लंघन होगा, जिसके मुताबिक बीजिंग में तैयार होने वाले विधायक शहर में कहीं लागू नहीं हो सकते हैं। हांगकांग विधायी परिषद के पूर्व सदस्य गैरी फैन ने कहा कि इस फैसले को चुनौती दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा,
It will allow the authority, the mainland authority.
ये चीन के प्रशासन को वेस्ट काउलून स्टेशन पर चीन का कानून लागू करने की अनुमति देगा। ये एक देश दो प्रणाली और मूलभूत कानून का उल्लंघन है। हम इसे मंजूर नहीं कर सकते हैं। हमें बाहर आना होगा और सरकार से साफ तौर पर और जोर से कहना होगा कि हांगकांग के लोग इस समझौते को मंजूर नहीं कर सकते हैं। ये थे गैरी फैन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण पूर्वी फ्रांस के जंगलों में लगी आग टूरिस्ट रिजॉर्ट सैन टूपे तक पहुंच रही है। आग पर काबू करने के लिए करीब 2000 अग्निशमक कर्मियों को लगाया गया है, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू करने में दिक्कत आ रही है। अनुमान है कि आग पर गुरुवार के पहले तक काबू नहीं होगा। अग्निशमन विभाग के अधिकारी जीन पेराल्डी ने बताया, दिक्कत यह है कि आग रिहायशी इलाके तक पहुंच रही है। तेज हवाओं की वजह से आग पर पूरी तरह काबू नहीं हो सका है। हर बार जब हम सोचते हैं कि हमने प्रगति की, तब आग दूसरे हिस्से में फैल जाती है। 300 लोग जमीन पर तैनात हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है। हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, लेकिन कई इलाकों में जबरदस्त आग लगी हुई है। ये थे जीन पेराल्डी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस ने चेतावनी दी है कि उस पर अमेरिका की ओर से नए प्रतिबंध लगाए गए तो दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा धक्का लगेगा। उप विदेश मंत्री सरगई रयाफकोव ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को खतरनाक लैंडमाइन की तरह बताया। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य बीते साल हुए चुनाव में कथित दखल को लेकर रूस पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक पर मतदान करेंगे। एक निगरानी समूह का कहना है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के करीब विद्रोहियों के इलाके पर हुए हवाई हमले में 8 आम लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 30 लोग घायल भी हुए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। रामनाथ कोविंद ने आज भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। भारत की संसद में आयोजित विशेष समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। रामनाथ कोविंद इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे। समारोह में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एचडी देवेगौड़ा के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद थे। सलमान रावी की रिपोर्ट।
संसद के सेंट्रल हॉल में भारत के राष्ट्रपति के आगमन की घोषणा हो रही है।
महामहिम राष्ट्रपति जी।
मगर यह उद्घोष प्रणब मुखर्जी के लिए है, जो बतौर राष्ट्रपति आखिरी बार संसद आए हैं। मौका है नए राष्ट्रपति के पारंपरिक शपथ ग्रहण समारोह का। इस उद्घोषणा के बीच लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने चुनाव आयोग से प्राप्त नए राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित अध्यादेश को पढ़कर सुनाने की अनुमति मांगी।
आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित राष्ट्रपति की घोषणा को पढ़ा जाए।
इस घोषणा के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने रामनाथ कोविंद को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई।
मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा
तथा अपनी पूरी योग्यता से
संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा।
शपथ ग्रहण के फौरन बाद पारंपरिक 21 तोपों की सलामी भी दी गई। संसद में मौजूद सांसदों, पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्रियों को संबोधित करते हुए रामनाथ कोविंद ने अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताया।
मैं एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूं। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है, लेकिन ये यात्रा अकेले सिर्फ मेरी नहीं रही है, हमारे देश और हमारे समाज की भी यही गाथा रही है। हर चुनौती के बावजूद हमारे देश में संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन किया जाता है और मैं इस मूल मंत्र का सदैव पालन करता रहूंगा।
रामनाथ कोविंद ने वो पल भी याद किए जो बतौर सांसद उन्होंने इस भवन में बिताए थे।
मेरी कई पुरानी स्मृतियां ताजा हो गई हैं। मैं संसद का सदस्य रहा हूं और इसी सेंट्रल हॉल में मैंने आप में से कई लोगों के साथ विचार विनिमय किया है। कई बार हम सहमत होते थे, कई बार असहमत, लेकिन इसके बावजूद हम सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।
शपथ ग्रहण समारोह का समापन राष्ट्रगान से हुआ, जिसके बाद भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे भी लगे। बाद में प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति भवन से पारंपरिक विदाई दी गई और नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें उनके घर तक खुद छोड़ने गए। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
ब्रिक्स एनसीए की मीटिंग के ठीक पहले चीन के मीडिया ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधने की कोशिश की है। चीन का मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने मुख्य सुरक्षा सलाहकार डोभाल को डोकलाम विवाद का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। इसके साथ ही इस लेख में ब्रिक्स एनसीए की मीटिंग में सिक्किम सीमा विवाद में सुलह का रास्ता निकाले जाने की अटकलों को भी खारिज किया गया है। चीन का यह भी कहना है कि अगर जरूरी हुआ तो वो भारत के खिलाफ युद्ध से भी पीछे नहीं हटेगा। मैंने इंडियन एक्सप्रेस के सह संपादक सुशांत सिंह से संपर्क कर पूछा कि चीन द्वारा अजीत डोभाल को विलेन बनाने की कोशिश को आप किस तरह से देखते हैं।
देखिए, ऐसा है, ग्लोबल टाइम्स का बहुत ही एक उस तरह का अखबार है, उस तरह का समाचार पत्र है जो कि बहुत ही एग्रेसिव लाइन लेता है और बहुत ही नेशनलिस्टिक और जिंगोइस्टिक लाइन लेता है। वो सिर्फ भारत के खिलाफ ही नहीं बल्कि जापान के खिलाफ, कोरिया के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ और भी अन्य देशों के खिलाफ। तो उसने जो इस तरह का आज का जो उनका संपादकीय है जिसमें कि उन्होंने अजीत डोभाल को स्कीमर बोला है और साजिश करने वाला बताया है, उसको हमें ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। पर ज्यादा समझने वाली बात यह है कि जो डेली टाइम्स का जो ये एडिटोरियल है, जो ये संपादकीय है, उसके साथ साथ जो बाकी उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के हों, चाहे वो उनकी सेना की ओर से हों, चाहे वो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हों, जब आप इस संपादकीय को उन सारे स्टेटमेंट्स के साथ देखते हैं तब थोड़ा डर लगता है कि चाइना कुछ ज्यादा ही एग्रेसिवली और कुछ ज्यादा ही गुस्से में बात कर रहा है।
इसी अखबार में कहा गया है कि भारत को अब दूसरा सबक सिखाए जाने की जरूरत है, शायद भारत पुरानी बात भूल गया है। तो ये एक बड़ी गंभीर चीज है, युद्ध का नाम वो अपने मुंह से पहली बार ले रहे हैं।
नहीं, पहली बार तो नहीं है, इससे पहले भी ग्लोबल टाइम्स ने इस महीने के शुरुआत में और 10 तारीख के आसपास भी इस तरह की भाषा का प्रयोग किया था, जहां पर उन्होंने बोला था कि भारत को भूलना नहीं चाहिए कि 1962 में क्या हुआ था, और जब अरुण जेटली साहब का जवाब आया था कि 2017 1962 नहीं है, और उसके बाद भी उन्होंने फिर उस पर एक संपादकीय लिखा था। तो ये तो इस विवाद की शुरुआत से ही ग्लोबल टाइम्स इस तरह की पोजीशन ले रहा है और इस तरह की बात कर रहा है कि भारत को भूलना नहीं चाहिए 1962 के बारे में।
लेकिन अगर मान लीजिए, हालांकि ये स्पेकुलेशन है, अगर युद्ध की नौबत आती है तो भारत कहाँ टिकेगा चीन के सामने?
देखिए, युद्ध कई प्रकार से है, मतलब पहले तो बनिस्बत मुझे ऐसा लगता है खुदा ना खास्ता युद्ध की नौबत नहीं आएगी, डिप्लोमेसी से समस्या सॉल्व हो जाएगी। पर अगर युद्ध होता भी है तो देखिए, समझने वाली बात है किस तरह का युद्ध है। क्या ये लिमिटेड वॉर होगा सिर्फ डोकलम क्षेत्र में? क्या ये लिमिटेड वॉर होगा किसी और इलाके में, लद्दाख के किसी इलाके में या अरुणाचल प्रदेश के किसी छोटे से इलाके में, या ये पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, पूरा 4000 किलोमीटर पे कोई बड़ा युद्ध होगा जिसमें कि न्यूक्लियर हथियारों का भी प्रयोग होगा? ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा अगर बात बढ़ गई, ये भी मतलब बहुत, जैसे आप बोल रहे हैं, स्पेकुलेटिव है और बहुत लो प्रोबेबिलिटी है, तो कहीं पर एक बहुत ही लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी भी पर्टिकुलर इलाके में, 50-60-100 किलोमीटर के इलाके में, जिसमें कि दोनों सेनाएं थोड़ी बहुत लड़ाई करके शायद जो भी होता है उसको कर लेंगी। ऐसे किसी भी लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट में जो भारतीय सेना की क्षमता है उसको कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि ये मतलब बहुत बड़ी सेना है और पूरे इलाके पर लड़ाई करने की काबिलियत रखती है, तो इस जगह पर भी वो आराम से छोटे इलाके में शायद ढंग से लड़ पाएगी।
ये बताइए, फेस सेवर क्या है? अगर भारत वापस आता है इतने सब दबाव के बाद तो उसकी किरकिरी नहीं होगी?
देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि कोई फेस सेवर नहीं मिल रहा है जिसमें कि भारत और चीन दोनों साइमल्टेनियसली विड्रॉ कर सके, क्योंकि चीन ने इस बात को इतना ज्यादा एग्रेसिवली लिया है और इतनी एग्रेसिव बातें की है, ऐसा कोई फेस सेवर नजर नहीं आ रहा है। भारत के लिए तो फेस सेवर एक ही है कि चीन की जो सेना की टुकड़ी है जो वहां पर सड़क बनाने के लिए आई थी वो वहां से वापस उठे, पर चीन को ऐसा क्या फेस सेवर मिले जिससे कि उनकी सेना की टुकड़ी वहां से उस वक्त हटे और भारत भी वहां से हटे? ऐसा कोई फेस सेवर जो दोनों लोगों को एक्सेप्टेबल हो वो नहीं मिल रहा है। वो शायद जब भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जाएंगे 27-28 तारीख को, तब शायद कुछ बातचीत से ऐसा कोई फेस सेवर शायद निकले।
ये थे इंडियन एक्सप्रेस के सह संपादक सुशांत सिंह। इसराइल के एक मंत्री ने ये मान लिया है कि पवित्र परिसर में मेटल डिटेक्टर लगाना एक गलती थी। मेटल डिटेक्टर अब भले ही हटा लिए गए हैं, लेकिन मुसलमान अल अक्सा मस्जिद में जाने के लिए फिलहाल राजी नहीं है। उनकी मांग है कि इसराइल को इससे पहले तमाम अतिरिक्त सुरक्षा हटानी होगी। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए संदीप सोनी से।
विवादित मेटल डिटेक्टर हटाने के फैसले के बावजूद यरूशलम में मुसलमान पवित्र स्थल का बहिष्कार कर रहे हैं। टेंपल माउंट या हरम अल शरीफ के नाम से मशहूर इस जगह पर 14 जुलाई को 2 इसराइली पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद इसराइली अधिकारियों ने पवित्र स्थल के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए थे। इसके विरोध में फलस्तीनियों ने लगभग 1 हफ्ते तक जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मेटल डिटेक्टर लगाकर अल अक्सा मस्जिद में दाखिल होने के उनके अधिकार पर पाबंदी लगाई गई है। फलस्तीनी विधायी परिषद के सदस्य डॉक्टर मुस्तफा बगूटी ने बीबीसी से कहा कि अब लोग मस्जिद में तभी लौटेंगे जब इस्लामी नेता इस बारे में संतुष्ट हो जाएंगे कि तमाम अतिरिक्त सुरक्षा हटा ली गई है।
The religious leaders are now, I've just been talking to them, they are now examining in details whether Israel
धार्मिक नेता ब्यूरो की पड़ताल कर रहे हैं कि इसराइल ने सभी मेटल डिटेक्टर और सभी कैमरे हटाए हैं या नहीं जो 14 जुलाई के बाद लगाए गए थे। आश्वस्त होने के बाद लोग मस्जिद में जाने लगेंगे।
डॉक्टर मुस्तफा बगूटी ने यह भी कहा कि मस्जिद में पहले से ही सुरक्षा बंदोबस्त बहुत ज्यादा है और इसराइल ने जो कदम उठाए उनकी जरूरत ही नहीं थी।
We are not sure that there were any weapons inside the mosque. This is the Israeli claim. They couldn't prove it.
हमें नहीं पता कि मस्जिद के भीतर कोई हथियार है या नहीं, जैसे कि इसराइली पुलिस दावा कर रही है, हालांकि वो इसे साबित नहीं कर पाई है। नौबत यह है कि इजरायली सुरक्षा कर्मियों की मंजूरी के बिना कोई अपाहिज व्हीलचेयर भी मस्जिद में नहीं ले जा सकता।
फलस्तीनी विधायी परिषद के सदस्य डॉक्टर मुस्तफा बगूटी के शब्द। अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद परिसर से इलेक्ट्रॉनिक गेट्स हटा लिए गए हैं। इस पर फलस्तीनी प्रधानमंत्री रमी हमदल्लाह ने कहा कि उनके लोग जॉर्डन से इसकी पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं जो पवित्र स्थल के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।
हम जॉर्डन में अपने भाइयों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें पूरी बात बताएं। अभी तक हमें ब्यौरा नहीं मिला है, खुदा जाने अगले कुछ घंटों में हमें ये खबर मिल जाए। इलेक्ट्रॉनिक गेट्स हटाने के बारे में हमें अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।
फलस्तीनी प्रधानमंत्री रमी हमदल्लाह के शब्द। यरूशलम में मौजूद बीबीसी संवाददाता टॉम बैटमैन का कहना है कि इसराइली अधिकारियों ने जब पवित्र स्थल का सुरक्षा घेरा बढ़ाया तो फलस्तीनियों को लगा कि उनकी मस्जिद पर नियंत्रण बढ़ाने की और कोशिश की जा रही है। अल अक्सा मस्जिद कब्जे वाले पूर्वी यरूशलम में फलस्तीनियों की राष्ट्रीय चेतना का एक शक्तिशाली प्रतीक मानी जाती है।
मुसलमानों की मांग के अल अक्सा से अतिरिक्त सुरक्षा हटाई जाए। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। भारत की यात्रा में आए इराक के विदेश मंत्री इब्राहिम अल जफारी ने कहा है कि वो इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि इराक गए 39 भारतीय लोग अभी जीवित हैं या नहीं। इन भारतीय लोगों को 2014 में आईएस ने अगवा कर लिया था। पिछले सप्ताह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इन लोगों के रिश्तेदारों से कहा था कि ये लोग जीवित हैं और संभवतः मौसूल के पास किसी जेल में बंद हैं। हमारे साथी रविंदर सिंह रोबिन ने इन लोगों के कुछ रिश्तेदारों से बात की।
इराक के विदेश मंत्री इब्राहिम अल जाफरी के बयान के बाद इराक में फंसे 39 भारतीयों के परिवारों की चिंताएं गहरी हो गई हैं। उनकी निगाहें भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान की तरफ हैं, जो उन्हें लगता है कि शायद अच्छी खबर लेके आए। बताते चलें कि आज से तकरीबन 3 वर्ष पहले 40 भारतीय युवक इराक में लापता हो गए थे, जिनमें से एक नौजवान हरजीत मसीह किसी तरह भारत वापस आ गया और उसने ये खुलासा किया था कि उसके 39 साथियों को आतंकियों ने मार गिराया है। हालांकि 39 भारतीयों के बारे में अभी तक भारत सरकार कोई सुराग नहीं जुटा पाई। इन युवकों के परिवार वालों ने पिछले 3 वर्षों में कई बार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की है, लेकिन इन लापता पंजाबी युवकों के बारे में सरकार उन्हें जानकारी नहीं दे पा रही। गौरतलब है कि पिछले दिनों इराकी विदेश मंत्री ने अपने भारत के दौरे के दौरान बयान दिया था कि इराक में आतंकियों के चुगले में फंसे 39 भारतीय जिंदा है या उनकी मौत हो चुकी है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उनके इस बयान के बाद परिवार वाले भारत सरकार से गुहार कर रहे हैं कि सरकार उन्हें सच बतलाए। हरजीत मसीह ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि यह सच है कि उसके साथियों को मार गिराया है। उनका कहना था,
पहला भी मैं कह चुका हूँ, मतलब कि जरे ही मेरे नाल दे मार दे गए, क्योंकि बहुत दुख हों जो मैंने गल कहना है। मेरे भरा ही उन्होंने बह के रोटी खाधी ही, उन्होंने घर द गल नहीं मानते कि हाँ उन्होंने मैं अपना भरा मनिया ही उन्होंने, क्योंकि उन्होंने घरद मतलब उल्टा ही मेरे से इल्जाम लाता वा, एजेंट शो करवाता वा, परचा करवाता है, पता नहीं की कुछ मैंने कह के तो मतलब परचा करवाया है। तो हूँ कहते कि सरकार कहती पी है कि हाँ वो बंदे है।
गाँव बब्बोवाली की रहने वाली हरभजन कौर कहती हैं कि उन्हें अपने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर पूरा विश्वास है।
ਉਹਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਪਹਿਲੋ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੀਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵੀ ਬਦੂਸ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਵਾ
ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਇਰਾਕ ਮੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥਾ ਜੋ ਇੱਕ 39 ਯੁਵਕੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਵਹੀਂ ਕਹੀਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਕੇ ਬਿਆਨੋਂ ਪਰ ਉਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ इराक में लापता 39 भारतीयों को 3 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है भारत सरकार अभी तक कोई पुख्ता सुराग नहीं दे पाई और उधर इराक के विदेश मंत्री के बयानों के बाद अब सरकार घिरी नजर आ रही है अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन बीबीसी हिंदी के लिए
झारखंड में 3 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है दर्जनों पुल और पुलिया बह गए हैं जबकि सैकड़ों गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़कर गिर जा रहे हैं अब तक 3 लोगों के मरने की खबर है जमशेदपुर के निचले इलाके में बाढ़ का पानी घुस जाने से बहुत से लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है क्या है हालात बता रहे हैं रांची से नीरज सिन्हा
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश होने की चेतावनी के साथ लोगों से सतर्क रहने को कहा है लौह नगरी जमशेदपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है तथा राहत कार्य चलाए जा रहे हैं साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है जमशेदपुर के उपायुक्त अमित कुमार ने बीबीसी को बताया है
स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के जलस्तर के बढ़ने के कारण से जमशेदपुर के तटवर्ती क्षेत्रों में खासकर के मानगो शास्त्री नगर और बागबेरा के दुष्पो का भी जलमग्न होने की संभावना है और साथ ही साथ वहाँ के जो भी प्रभावित लोग हैं उनको अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत जो है वो सूचना देना राहत शिविरों में उनको लाना और राहत शिविरों में तमाम तैयारियों के साथ जो है वो जिला प्रशासन जो पूरी तरह से मुस्तैद है
इस बीच राज्य सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को अलर्ट किया है दरअसल पठारी और आदिवासी इलाकों में सैकड़ों कच्चे घर धस गए हैं खेतों में लगे धान के बिचड़े बर्बाद हुए हैं रांची में बुधवार को सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है राजधानी के एक इलाके से मोहम्मद इमरान ने आंखों देखी बताई है
देखिए राजधानी का जो है वो जनजीवन अस्त व्यस्त है हम कह सकते हैं और साथ ही हजार से ज्यादा घरों में पानी घुस गए हैं और जो पानी घुसे ही नहीं साथ ही जो मुख्य सड़कें हैं जो गली मोहल्ले के जो सड़कें हैं उसमें 3 से लेकर 5 फीट तक पानी देखने को मिले
इनके अलावा सूबे की कम से कम दर्जन भर नदियां उफान पर हैं प्रसिद्ध छिन्न मस्तिका मंदिर अजरप्पा के निकट दामोदर और भैरवी नदी में बाढ़ से दर्जनों दुकानें बह गई हैं। रजरप्पा के स्थानीय दुकानदार विजय परमानिक की जुबानी
किनारे जितने भी झोपड़ी वाले दुकान से सारे बह गए हैं सर और अभी स्थिति बहुत ही गंभीर है पूरा पानी का जलस्तर बहुत ही काफी बढ़ रहा है और जैसा बारिश हो रहा है और भी खतरा बढ़ते जा रहा है
उधर तेनू घाट मैथन और पंचेत डैम के फाटक खोले जाने के बाद आसपास के गांवों को सतर्क किया गया है जबकि कई स्टेट और नेशनल हाईवे पर पुल पुलिया के बह जाने से आवागमन भी ठप हुआ है चतरा के स्थानीय पत्रकार धीरेंद्र ठाकुर ने जानकारी दी है
लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण सिमरिया का एक महनैया डायवर्सन है जो बह गया है और हजारीबाग टू सिमरिया का जो आवागमन है पूरी तरह ठप हो गया है
जाहिर है भारी बारिश से बड़ी आबादी हलकान है और गरीबों की मुश्किलें बढ़ी है सबकी नजर राहत और हालात से निपटने की तैयारी पर है नीरज सिन्हा बीबीसी रांची
विज्ञान को आम लोगों तक ले जाने वाले प्रोफेसर यशपाल का 90 साल की उम्र में निधन हो गया वो विज्ञान को इस सरल अंदाज में बताते समझाते थे कि आम लोगों को भी साइंस की गूढ़ से गूढ़ बातें रास आने लगती थी भारत में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का काम उन्होंने जिस सहजता से किया वो अनोखा अंदाज कभी नहीं भूला जा सकता है एक बार बीबीसी ने उनसे पूछा था कि एक ऐसे देश को जहां करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं मंगलयान पर जाने की क्या जरूरत है तो उनका जवाब था
ये सवाल हर वक्त आते थे कि आप कॉस्मिक्रेज क्यों करते हो आप एस्ट्रोनॉमी क्यों करते हो आप स्पेस प्रोग्राम क्यों करते हो तो बड़ा आसान है अटेम्प्ट करने का कि हम इन चीज़ों पे जितना खर्च करते हैं मिनिस्क्यूल कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स तुम इतनी बंदूकें क्यों बनाते हो तुम इतने टैंक्स क्यों बनाते हो इतने हवाई जहाज क्यों बनाते हो अपने वो कहेंगे अपने उसके लिए अरे ज़रूरत है तुम्हें कितने लोगों को तुम क्या कर रहे हो और साइंस तुमने कभी नहीं की तुम समझते हो कि तुम्हारा काम है कि खोज करो दुनिया के लिए और दुनिया को बताओ कि क्या है, ये नहीं चलेगा। हमको भी उसका हिस्सा करने की ज़रूरत है। तो ये कहना कि इतने बड़े मुल्क में क्या है, आप जो 400 करोड़ 600 करोड़ खर्च कर देंगे इस प्रोग्राम में या 1000 करोड़ भी, तो तबाह हो जाएगा, ये नहीं होगा।
ये थे जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल। हमारे साथी विभुराज ने वैज्ञानिक मामलों के जानकार अमिताभ पांडे से बात की और पूछा कि प्रोफेसर यशपाल के विज्ञान में योगदान को किस तरह से देखते हैं आप।
एक सबसे बड़ी बात यशपाल जी के बारे में पहले बताना जरूरी है कि वो छोटे से बच्चे से भी जब साइंस में बात करते थे तो बिल्कुल उसके स्तर पर आके बात करते थे। उनको सबसे ज्यादा खुशी इस बात से मिलती थी कि लोग उनसे सवाल करें, और उन्होंने इसके लिए अपने फोन अपने ईमेल सबके लिए ओपन रखे हुए थे, यानी कोई भी उनको सवाल पूछ सकता है, और वो बड़े प्यार से उनका जवाब देते थे चाहे कितना भी सवाल बेतुका न लगे, उसमें पूरा इन्वॉल्व होकर उसको समझाते थे। इसके ऊपर उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी। तो प्रोफेसर यशपाल एक हिंदुस्तान के मतलब जो जिसको बोलते हैं जड़ को सीखने वाले जो कुछ लोगों के नाम लिए जाएंगे हिंदुस्तान के इतिहास में, तो उनमें से उनका नाम आता है। और वो पार्टिकल फिजिक्स जो है उसके बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट थे। हमें जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और यहाँ अपना ये भवन इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई अपना, तो उसमें उसके शुरुआती बिल्कुल उसकी नींव रखने वालों में से हैं। और वो कई बार बड़े गर्व से बताया करते थे कि मैं जैसे कि वहाँ पर रिसर्च कर रहा हूँ, एक दिन पंडित नेहरू सीधे उनके आके वहाँ पे आदम थे, अब बोला कि देख रहे तुम लोग क्या करते हो, तो सीधे अपने यहाँ पे उनकी जो लेबोरेटरी ले गए, वहाँ पे उन्होंने किस तरह से कॉस्मिक रेज के ट्रेस को रिकॉर्ड करते हैं और उसका जो पूरा प्रोसेस उन्होंने उनको दिखाया, तो नेहरू बिल्कुल बच्चों की तरह उत्साहित हो गए। तो उनके अंदर जो इस उम्र में भी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी बच्चों वाला जो उत्साह था और जो साइंस की जो बहुत ही खास चीज होती है कि आपने क्यूरियोसिटी हो और जो तुमने देखा है जो एक अद्भुत अनुभव किया है इस प्रकृति का उसको लोगों को बताने का आनंद, ये दोनों चीजें उनकी मतलब शख्सियत की सबसे मतलब महत्वपूर्ण आया।
उन्हें यशपाल कमेटी रिपोर्ट के लिए बहुत याद किया जाता है, उनका नाम अक्सर इस सिलसिले में आता है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें यशपाल कमेटी रिपोर्ट की जो सिफारिशें थी उसको कितना इम्प्लीमेंट किया गया और उस लिहाज से उनका कंट्रीब्यूशन कितना अधूरा है या कितना पूरा है, मतलब दोनों लिहाज से मैं पूछना चाह रहा हूँ।
यशपाल जी की खास बात ये थी कि वो एक अच्छे साइंटिस्ट, वही मैं जो शुरुआत में बात कर रहा था कि साइंस को लोगों तक साइंस कैसे पहुंचे, नॉलेज लोगों तक कैसे पहुंचे, ये उनका जिंदगी से बहुत बड़ा मतलब एक बोलना चाहिए कि जो उनका जो भी फोकस लाइफ का वो ये रहा है। और इसमें उन्होंने काफी सारे स्कूल के ऊपर उनकी रिकमेंडेशन थी, स्कूल एजुकेशन के ऊपर, वो अनफॉर्चुनेटली वो सारी रिकमेंडेशन गई, सरकार ने उनको एक्सेप्ट किया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे क्या स्तर पर क्या है वो हम सबको चारों तरफ नजर आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो उसके बाद आने वाली सरकार से तो क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि वो तो इन सारी चीजों को जो भी हिंदुस्तान में अच्छा उसको ध्वस्त करने में लगी हुई है। ये जो उनके यशपाल कमेटी की रिपोर्ट है, मुझे याद है कि वो रात को करीब 11-12 बजे फोन करके पूछे अमिताभ मैं इसमें ये कह रहा हूँ ठीक है कि नहीं ठीक है, पर उनको ना मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, तो मतलब वो किसी से भी पूछते थे कि मैं ये लिख रहा हूँ ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुमको ठीक लग रहा है। तो एक उनके एक पूरा जो उनके पर्सनलिटी, हम आमतौर पे अपने सोशल पॉलिटिकल स्पेयर में डेमोक्रेटिक होते हैं लेकिन अपने पर्सनल स्पेयर में डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं, और ये उनकी खास बात थी अपने पर्सनल स्पेयर में भी अपने यार दोस्तों में अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने घर के अंदर ये जो डेमोक्रेसी का जो करेक्टर है ये अपने एजुकेशन में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो उनकी सबसे जो खास बात है उनको मुझे आज तक हमेशा याद रहेगी और जिसको मैं हर जगह रिपीट करता हूँ, अपने लेक्चर्स में रिपीट करता हूँ, वो ये है उन्होंने कहा कि वाई वी शुड स्टडी साइंस, क्यों साइंस क्यों हमारे लिए जरूरी है। तो कहते थे कि साइंस जो है हमें हमारी जिंदगी का पर्सपेक्टिव देती है कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है इसके विशाल ब्रह्मांड में, जिसको हमने अनुभव किया है जो ज्यादा है विज्ञान के जरिए उसमें हमारी हैसियत क्या है, ये पर्सपेक्टिव हमको साइंस देती है और इस पर्सपेक्टिव से हमारे जिंदगी के मूल्य तय होते हैं, हमारी वैल्यू सिस्टम क्या है और इन वैल्यू सिस्टम से हमारी फिलोसफी डिफाइन होती है और वो फिलोसफी हमारी पॉलिटिक्स क्या करवाती है, हमारी पॉलिटिक्स क्या रहेगी जिंदगी में। ये उनका जो पूरा जो एक पर्सपेक्टिव था ये हर जगह उसको अप्लाई करते थे, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम की बात करें, वो साइंस की बात करें, साइंस एजुकेशन की बात करें, साइंटिफिक रिसर्च की बात करें।
प्रोफेसर यशपाल के बारे में बात कर रहे थे अमिताभ पांडे। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
रामनाथ कोविंद ने आज भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसराइल सरकार ने यरूशलम के पवित्र स्थल से मेटल डिटेक्टर हटा दिया है लेकिन मुस्लिमों का कहना है कि वो इस स्थान का बहिष्कार जारी रखेंगे। रूस ने चेतावनी दी है कि उस पर अमेरिका की ओर से नए प्रतिबंध लगाए गए तो दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा धक्का लगेगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।